हम आज के इस संदेश में, इस ब्रॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम और अभिनंदन करते हैं, और भाई फ्रैंक के साथ और सारे भाई बहनों को हम अभिनंदन कहते हैं, ग्रीट करते हैं। हम खुदावंद के बड़े आभारी हैं कि इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि हम खुदा के कलाम को, उसके वचन को सुन सकते हैं। इससे पहले कि भाई फ्रैंक हमसे बात करेंगे, मैं एक वचन से, कलाम से पढ़ूंगा हिस्सा, जूड, बुक ऑफ जूड से। मैं तीसरी आयत पढ़ूंगा, जूड उसकी तीसरी आयत। तीसरी आयत में लिखा है, प्रियो, जब तुम्हें मैं उस उद्धार के विषय में लिखने के लिए अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न करता रहा, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना जरूरी जाना कि उस ईमान में पूरी कोशिश करते रहो जो पाक लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और 20वीं और 21वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया में बाट जोते रहो। और 24 आयत भी हम पढ़ेंगे, 24 और 25 आयत भी पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री जूड, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता को महिमा और गौरव के साथ पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसे सनातन काल से है, यानी शुरू से है, अब भी हो और युगान युग, यानी कि अब तक होता रहे, आमीन। भाई फ्रैंक, मैं भी आप सबका बड़े तहे दिल से अभिनंदन और ग्रीट करता हूं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में। और इस वक्त बहुत सारे ग्रीटिंग्स हमको, हम आए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सारे अफ्रीका से और एशिया से, और हमारे सभी भाइयों की तरफ से स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, हमारे भाई जो बाल्टिक सी में हैं, और कनाडा से और यूएसए से भी, और हर जगह से हमको ग्रीटिंग्स आए। और जो हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने तहे दिल से, हमने इस बात को समझा कि हम एक बड़े खास मौके से, खास वक्त से गुजर रहे हैं, और फिर हम बड़े आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, हम अपने पूरे दिल से, कि जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वो फिर भी यहां और वहां और घरों में हर जगह इकट्ठे हो सकते हैं। और ये छोटी छोटी जो मंडलियां और फेलोशिप्स हैं, ये खुदावंद का वचन सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, और हम इसका इंतजार करते हैं, कर रहे हैं, और बहुत जल्दी दरवाजे खुल जाएंगे और सब कुछ बड़ा फर्क हो जाएगा। यहां पर क्रेफिल्ड में भी हम बड़े छोटे लेवल पर कुछ ही लोगों को जमा करके मीटिंग करते हैं, जैसे कि लोग सारी दुनिया में सुनते हैं। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम अपने पूरे दिल से जो बपतिस्मा के लिए आते हैं उनका बपतिस्मा भी होता है, जो जिनकी जिनकी शादी के लिए आते हैं उनका उनकी कार्रवाई भी की जाती है, और जिनके बच्चों को डेडिकेशन चाहिए वो भी आते हैं, क्योंकि बच्चों की जो मखसूसियत है वो की जाती है। लॉर्ड सफर नहीं हो पा रहा है, हम बाकी सारी चीजें तो हम कर रहे हैं जैसे हम करते थे, हम जैसे प्रभु की सहायता से खुदावन की मदद से करते थे, और अब आज के पाठ में, आज के सबक में चलते हैं। जैसे हम सब ने देखा कि इसका क्या मतलब है, और जब हम आखिरी वक्त को देखते हैं, और जिससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम जो अभी सबक पढ़ा गया, हमारे लिए कलाम पढ़ा गया, उसमें देखें किस तरीके से रसूल जो पाक रूह की अगुवाई में चलते थे और उसको उसकी अगुवाई को पाकर लिख देते थे, लिखा था उन्होंने, जो कि आज के वक्त के लिए हमारे, जिससे वो आज के जमाने में हमारे लिए वो एक सबक बन जाए। और जो हम आखिरी आयत है उसको दोबारा पढ़ेंगे, जो भाई बोग ने पढ़ी, एक बार उस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, यानी कि जूड उसकी जूड 25 आयत को दोबारा पढ़ रहे हैं, उस और जूड यानी जूड 5 को पढ़ेंगे 25 के बाद। उस एकमात्र परमेश्वर खुदावन हमारे उद्धार करता और महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से वो अब भी हो और हमेशा होता रहे। और 5वीं आयत, पर अगर तुम जान चुके हो, इससे पहले कि हम दूसरी आयत पढ़ें, मैं ये कहना चाहता हूं जो ईमान है, विश्वास है, फेथ है, वो खुदावन की तरफ से एक मुफ्त इनाम है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्राहम के दिनों से अब्राहम ने खुदा पर ईमान लाया, विश्वास रखा, और जो खुदा पर ईमान नहीं लाता वो खुदा को झूठा ठहराता है। और अब हम इब्रानियों में देखते हैं उसकी 11वीं आयत और पहली बाब में, पहली आयत में, 11वें की पहली में पढ़ते हैं। बहुत सारे हवाले वहां हम देखते हैं जो बताते हैं कि ईमान क्या है, ईमान के बारे में बताते हैं। एक कोई भी एक विश्वास नहीं, पर जैसा कि यहां पढ़ा गया कलाम में, जो हम उस ईमान के लिए पर खड़े रहें मजबूती से, जो एक बारी खुदावन के फर्जंदों को दे दिया गया। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं क्योंकि उसने अपने खिदमतगार और अपने नबी को भेजा, विलियम ब्रैनम को, हमारे वक्त में, कि हमारे को उस ईमान में वापस ले आए जो खुदा का जिंदा कलाम है और ईमान है, उसमें वापस ले आए, उसमें हमें बहाल कर दे जो खुदा का कलाम है, उस सच्चे और जिंदा कलाम के अंदर हम वापस आ जाएं। इस बात को ध्यान रखें, इस कलाम को ध्यान रखें, याद, जिसमें हमारे खुदावंद ने कहा था कि जिस जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो जो विश्वास नहीं करेगा, ईमान नहीं लाएगा, वो दोषी ठहरेगा। उसके बाद और कोई ऑफर नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, जो ईमान लाता है और बपतिस्मा लेता है वो निजात पाएगा। ये साफ साफ लिखा है, जो ईमान नहीं लाता वो उस पर दोष लगाया जाएगा, वो दोषी है, खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा की जरूरत लिखने की जरूरत ही नहीं थी और इससे ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, सुनिए, ये पांचवी आयत को सुनिए, यहूदा 5 आयत, Jude 5। अगर तुम सब बार बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने यानी ईमान ना लाने वालों को नाश कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। अब ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है, संजीदा बात है जिसके बारे में यहां बताया गया है कि खुदा का जो यीशु खुदावंत का जो खून है वो दरवाजों की दीवट पे लगाया गया और कहा गया, जब मैं ये खून देखूंगा जो तुमने अपने अपने दरवाजों पर लगाया है, तब मैं तुम्हारा जो फरिश्ता है मौत का वो पास ओवर कर जाएगा और वो मौत जो है मैं तुम्हारे ऊपर से पास ओवर हो जाऊंगा और छोड़ दूंगा, बख्श दिए जाओगे। अगर तुम खून के अंदर ढके हुए हो, छुपे हुए है, और उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे जो पहलौटे उनको जाने दे, जिससे कि वो मेरी खिदमत कर सकें। और हम जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, इज़राइल की पूरी कहानी हम जानते हैं। और यहां नए अहदनामे में लिखा है, जिन्होंने यहां हमने पढ़ा कि जिन्होंने ईमान नहीं लाया, उन्होंने मन्ना खाई, बाहर आए, उन्होंने पिलर ऑफ क्लाउड भी देखा, आग का सतून भी देखा, पर फिर भी ईमान में भटक गए, ईमान ना रख सके, तो वो नाश कर दिए गए, नेस्त नाबूद कर दिए गए। पहला 23 हजार लोग एक ही झटके में मर गए। मैं ये कहना चाहता हूं खासतौर अपने पूरे जोर से कहना चाहता हूं, खुदावंत, जब तक हम ईमानदार नहीं रहेंगे खुदावंत कुछ नहीं करेगा, खुदावंत हमारी अनसुनी कर देगा। जैसे भाई ब्रैनम ने भी कहा कि 60 से ज्यादा दफा उन्होंने कहा, और ये पहला गुनाह था जो गार्डन ऑफ ईडन में अदन की वाटिका में था, वो क्या था, वो पहला गुनाह क्या था जो शैतान ने, जो सरपेंट ने, वो ईव के पास आया, हवा के पास आया, और उसने उसको अपने वश में किया। तब वहां पर एक सवाल पैदा कर दिया उसके मन में, डाउट पैदा कर दिया कि क्या खुदा ने यही बात कही थी। और देखिए, यहां पर उसने गुनाह को पैदा कर दिया और उससे मौत आई। मैं एक बार फिर से कहता हूं, इस बात को लिख लें, भाई ब्रैनम ने कहा इसके बारे में खास तौर पे, कि जो ईमान ना रखना, अविश्वास करना, ये पहला गुनाह था। इसके बाद बाकी सारी चीजें जो हैं वो उसके बाद पैदा होती हैं। पर उनका मेन कारण, मेन रीजन जो था वो ईमान ना लाना था। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। ये जो कलाम पढ़ा गया ये हमें ईमान रखना है, फेथ रखना है, जैसे कलाम कहता है, जैसे कि कलाम खुदावन ने कहा, जैसे खुदावन ने कहा अपने कलाम में, जैसा कि कलाम कहता है, जो जो ईमान लाएगा उसके अंदर से, उसके दिल से एक ऐसा सोता निकलेगा। ये ईमान से, ये ईमान की बात है। और खुदावन की प्रशंसा हो, उसके नाम को जलाल मिले। हम ये उसका शुक्रगुजार हैं कि हम वापस उस ईमान में, उस ईमान की हालत में बहाल हो चुके हैं। और इसलिए, और अब हम ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं अपने मनों से कि खुदावंद का हर एक कलाम जो है वो हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे दो पत्रस में, दूसरा पत्रस पहले बाब में पत्रस ने लिखा कि कोई भी नबूवत या भविष्यवाणी जो है वो किसी व्यक्तिगत या पर्सनल या प्राइवेट तर्जुमे की मोहताज नहीं है। फिर हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि बहुत सारे जो खिदमत करने वाले हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बशारती हैं, वो कलाम के बारे में तो पेशकश करते हैं पर कलाम को पेश नहीं करते। मैं यहां कलाम के बारे में पेशकश करने नहीं आया हूं कि मैं उसमें अपने ख्यालों को मिक्स कर दूं, अपने ख्याल मिला दूं। जैसा पौलुस ने कहा तिमोथियस के साथ, तिमोथियस को कहा, और सब जानते हैं, दूसरा तिमोथी 4 में कहा कि खालिस कलाम का प्रचार करो, खालिस कलाम को बोलो, क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे जो अलग अलग डॉक्ट्रिन और अलग अलग शिक्षाएं और तालीमें लेकर आएंगे। खुदावंद हमें फजल दे, अनुग्रह दे कि हम इस वक्त में इस बात को समझें और कि क्या सिर्फ बुलाहट ही नहीं और तैयारी उसके साथ है। उसी तरीके से हमको दिन पर दिन हरे खुदा के हर एक लफ्ज, हर एक कलाम को वर्ड बाय वर्ड हमें उस पर ईमान रखना है और उसमें चलते रहना है। और हम इस आशा में ताकते रहें, इस आशा में ताकते रहें कि खुदावन जो है वो जो कुछ उसने वादा किया खुदावंद उसको पूरा करने वाला है। जैसा हम सबको पता है कि हम इस पर भी भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं कि भाई ब्रैनम जो थे खुदावंद की तरफ से भेजे हुए खिदमतगार थे, खिदमत करने वाले थे, जैसे कि पहली बुलाहट के टाइम, खुदावंद की पहली आमद के टाइम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था, उसी तरीके से भाई ब्रैनम को एक संदेश और मैसेज के साथ भेजा गया जिससे कि वो लोगों को बहाली और तैयारी उस मैसेज से हो सके। और लूका 1 में इसी तरीके से लिखा है कि भाई ब्रैनम ने कहा कि भाई ब्रैनम जो थे उनको एक मैसेज भेजा गया, मैसेज के साथ भेजा गया, संदेश के साथ भेजा गया। और ये हम कहते हैं 40 से ज्यादा दफा भाई ब्रैनम ने इस बात को कहा 11 जून 1933 की बात है, जब वो ओहायो और नदी पर खड़े थे और वहां पर वो जब वो 17वें आदमी को, 17वें इंसान को, मखलूक को बपतिस्मा देने पर थे तो एक बड़ी अलौकिक और अजीब और गरीब लाइट वहां पर आई और उसके साथ बड़ी आवाज आई बड़ी तेज हवा के साथ, और उसमें कहा गया कि जैसा यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो खुदावन की पहली आमद की तैयारी कराए, उसी तरीके से तुमको भी एक मैसेज, एक संदेश के साथ भेजा गया है जो खुदावन के दूसरी आमद की तैयारी कराएगा। हम खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं कि भाई ब्रैनम कि वो इस संदेश को, इस मैसेज को लाए। उसके बाद खुदावन ने उनको अपने पास बुला लिया, और ये जो मैसेज है, जो संदेश है, ये जो पूरा खालिस मैसेज और संदेश है, ये वो कलाम है जो सारी शिक्षाएं खुदावन के बारे में, चाहे लॉर्ड सफर हो, चाहे गॉड हेड हो, चाहे बपतिस्मा हो, और कलीसिया के बारे में, ये सारी बातें ब्राइड के बारे में और अंत के समय की बातों के बारे में, ये सारी चीजों का जो बयान है, इनका खुलासा ये हमारे ऊपर कर दिया गया इस मैसेज के थ्रू। और इसके बाद उनको यह भी कहा गया, और कहा गया कि ये जो रूहानी खुराक है, इसको वो स्टोर में डालें, भंडार में डालें, और सातवीं सील में, और जब 24 मार्च 1963 को जब वो पीच कर रहे थे, पहले 7 मिनट के अंदर, और वो सरमन में बोलते हैं, भाई नेवल की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब वो खुराक जो है वो स्टोर हो चुकी है, भंडारों में हो चुकी है। ये बात ही नहीं है, पहली अप्रैल 1962 में उनको कहा गया था स्विट्जरलैंड मत जाना, ये जेफरसनविल वापस चले जाओ और वहां जाके इस खुराक को जमा करो, इकट्ठा करो। और 2 अप्रैल को 1962 को खुदावन ने बड़ी ऊंची आवाज में और कहा, खुदावन ने कहा एक ईमेल में, मुझे कहा गया कि भाई फ्रैंक, खुदावन ने आपसे बात करी, क्या आपने कभी खुदावन को देखा? और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने उसको नहीं देखा, पर जितनी बारी वो 3 से 5 मीटर के बीच में मेरे सामने खड़ा था, और जब भी वो खड़ा था और मैं वहां देख सकता था, और मुझे पता था कि वो वहां खड़ा है, और वो दाहिनी ओर, दरवाजे के दाहिनी ओर खड़ा है, और हमेशा यही तरीका था। अब देखिए, यहां हम देखें, ये मेरे पास ये सारे सरमन्स हैं जो भाई ब्रैनम ने प्रीच किए, ये सरमन्स, और उसने मुझे ये सारे सरमन भेजे गए, और इन रील्स के ऊपर, टेप रील्स के ऊपर जो इस शेल्फ पर रखे हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे सरमन इनमें हैं, और जिससे कि ये खुराक जो है जमा की जाए। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने इतने सारे जो सरमन से इनको ट्रांसलेट किया, 1962, 1963 और 1964 में मैंने इनको ट्रांसलेट किया, इनको जर्मन जुबान में मैंने ट्रांसलेट किया, और इसके बाद और फिर मैं जो था ये रूहानी खुराक मैंने लोगों में बांटनी शुरू करी, और उसके बाद हमारे पास ये टेस्टिमनी, ये गवाही है कि खुदावन ने मुझे हिदायत दी कि शहर बाय शहर जाओ और इन जगहों पर जाओ और जा करके खुदा के कलाम को प्रीच करो और इस कलाम को दो, जैसा कि भाई ब्रैनम ने कहा था। कि ये मैसेज जो है, ये कलाम जो है, ये सारी दुनिया को कवर करेगा। और इस तरीके से ये वाकई में ये ऐसा हो गया। और फिर जितने जो लोग खिदमत में लगे हैं भाई लोग, वो सारी इधर उधर की तालीमों को छोड़ दें, इधर उधर से जो आती हैं, और सिर्फ खुदावंद के खालिस कलाम, जो खालिस कलाम है खुदावंद का, सिर्फ उसे प्रीच करें। वो हम कलाम के बारे में प्रीच ना करें, हम कलाम को प्रीच करें। जो जो मुकाशवा 10:7 के बारे में कहा गया है, उसे उसे प्रीच ना करें, जो वहां लिखा है उस पर खड़े रहें, उस पर कायम रहें, उसे प्रीच करें। उसमें कुछ जोड़े ना, उसमें कुछ मत जोड़ें, सिर्फ वो कहें जो वहां खुदावन ने कहा है। और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, अब हम और पढ़ते जाएंगे और पढ़ेंगे। एमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट और 26 आयत और 16 से 18 आयत। प्रेरितों के काम एमाल एक्ट 26:16-18। पर तू उठ और अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिससे पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान से अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं, और पापों की क्षमा यानी कि पापों की माफी उन लोगों के साथ जो मुझ पर ईमान रखने से पाक किए गए हैं मीरास पाएं। खुदा उनकी तारीफ हो, उसके नाम की तारीफ हो। यहां पर पौलुस बड़े तरीके से इस बात का निचोड़ बता रहा है। कहता है खड़े हो जाओ, और खुदावन ने उसे कहा कि मैं तुझे गैर कौमों के पास भेजता हूं जिससे कि तू वहां पर जाकर तू उनकी आंखें खोले और तू अपनी गवाही दे। ये नहीं पौलुस रसूल नहीं, पौलुस रसूल आंखें नहीं खोलता, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। वो जो गवाही दे रहा है अपने जीवन की, जिंदगी की, उस गवाही से, उस कलाम के प्रीच किए जाने से लोगों को इस चीज का इकरार करना पड़ता है कि वो गुनाह में है। इसलिए हम इस खुशखबरी का को प्रीच करते हैं, ये उद्धार का की जो योजना है इसको हम प्रीच करते हैं, गॉस्पल को, इस खुशखबरी को, जिससे कि हम इस चीज का एहसास कर सकें कि हम तो खोए हुए हैं और हम पाप में हैं, गुनाह में हैं, और हम छुटकारे के लिए, नजात के लिए दुआ करें। और फिर ये गवाही के द्वारा और इस सारी दुनिया को ये कहा जाता है कि पहला जो गुनाह हुआ था उससे हम सब गुनाह की हालत में, गुनाह आलूदा हालत में पैदा हुए हैं, और इससे ही इसीलिए हम मर जाते हैं। और तब हम इस चीज का प्रचार करते हैं, ऐलान करते हैं कि खुदावंद ने कहा, खुदावंद खुद आया और वो हमारे लिए गुनाह बन गया, जिससे कि हम जो कुछ भी हमें अटैक करती है, जो भी चीज हमें अटैक करती है, ये सारी जो है हुक्म दूली जो है, जो हमारे को हिट करती है, उसने अपने ऊपर ले ली, सारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और वफादार और ईमानदार रहा और हुक्म मानने ला हुक्म उस हुक्म मानने वाला रहा और वो उसने हुक्म माना तब तक जब तक कि मौत ना आई, यानी मरते दम तक वो ईमानदार रहा। ईमान रखना और हुक्म मानना, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं और ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इसलिए जो खुदावन की तरफ से जो भेजा जाना है, ये हमारी जो आंखें खोला जाना, ये हमारे सामने भी, हमारे बाद सामने भी हो रहा है। भाई ब्रैनम ने इस चीज को बताया कि करीब करीब 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बात को समझ पाते थे और अगर उनमें से आधे भी पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पर ये नंबर, ये गिनती बहुत बड़ी होगी, जो खुदावन का बड़ा शुक्र हो इस बात के लिए। और ये बहुत जरूरी था कि हमारे खुदावन ने आकर के अपना खून बहाया, जो नए अहद का खून था, नए नियम का खून था, और जिससे कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम हो जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 13 बाब और 20वीं आयत, यूहन्ना 13:20। यूहन्ना 13:20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, वो मुझे रिसीव करता है, और जो मुझे रिसीव करता है वो मेरे भेजने वाले को रिसीव करता है। और देखिए, पतरस और भी कह सकता था कि खुदा ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझे कुंजियां देता हूं खुदावन के किंगडम की, उसके राज की कुंजियां देता हूं, उसकी बादशाह की चाबियां देता हूं, जो तू आसमां बांधेगा वो, जो जमीन पे लूज करेगा वो वहां लूज होगा। और ये खुदावन की तरफ से भेजा हुआ था, ये वो डिवाइन, ये वो आत्मिक भेंट थी जो खुदा ने उसको पतरस को दी। जैसे कि भाई ब्रैनम को जब खुदावन ने भेजा तो उससे उन्होंने, और हम दोबारा कह सकते हैं जैसा कि नबी ने कहा, बहुत कितनी बारी उसने कहा, इस बात को बताया, मान लीजिए बहुत बारी उन्होंने कहा कि खुदा ने इस बात को कहा कि उसने अपने नबी और अपने खिदमतगार को, सेवक को भेजा, और जो उसको ग्रहण करता है, रिसीव करता है, जिसे खुदा ने भेजा, तो फिर वो खुदा को रिसीव करता है। और फिर जो खुदा ने अपने कलाम के अंदर वादा किया है और जिसको खुदावंद भेजता है, तो वो अपने कलाम को नहीं पेश करता, वो भेजा हुआ आदमी खुदावंद के कलाम को पेश करता है, और जैसा कलाम में लिखा है। और भाई ब्रैनम ने ऐसा ही किया और मैंने भी यही किया खुदा के फजल से। हम पढ़ते हैं और हम मत्ती 24 और 3 आयत, मत्ती 24 और 3, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उसे कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जंगल का अंत और जगत का अंत क्या होगा। हमने इसके बारे में कई बारी बात करी। ये तो बहुत जरूरी बात, खुदावंद की जो वापसी है ये हमारे लिए बहुत खास सब्जेक्ट है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं क्योंकि जर्मन बाइबल में यहां पर 17 बार वापसी का जो शब्द है ये जर्मन की बाइबल में इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदावंद की तो कई आमद हैं, तो खुदावंद की वापसी जो है वो एक है। और ये जो कलाम है और ये बात जो है ये हमारे खुदावंद ने 14 में कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं जिससे कि मैं आऊं और तुमको ले जाऊं जिससे कि तुम वहां हो, जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रह सको। और रैप्चर के वक्त में ये होगा कि खुदावंद की वापसी, जो के वापसी पर जो उसमें सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जिंदा रहेंगे हम भी बदल जाएंगे, हम दो और एक साथ मिलकर हम खुदावंद को मिलेंगे। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं। इस बात को ध्यान रखें भाई और बहनों, अब ध्यान से इस बात को सुने। मत्ती 24 में सब कुछ लिखा है कि उस वक्त क्या होना था। उसके बाद 14 आयत में हम पढ़ते हैं ये जो खुशखबरी है उसकी बादशाहत की खुशखबरी जो है ये एक गवाही के तौर पर सारी दुनिया में प्रीच की जाएगी, उसके बाद खात्मा होगा। और 15 आयत में हम देखते हैं और देखिए कि एडी 70वीं सदी में क्या हुआ था कि हैकल जो था जो हैकल को नाश कर दिया गया था, उसके बाद फिर एक नया वक्त आया। आप पढ़ सकते हैं उसके बाद 23वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं। जब 23 से 27 आयत में आप जाते हैं कि उसके बाद और उसके बाद वो जैसे कि रोशनी जो है बिजली कड़कती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पल झपकती आ जाती है, ऐसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जो कुछ पढ़ना चाहता है वो उसको वो समझ सकता है। उसकी अगली आयत से वो कहता है 29 आयत से वो कहता है और फिर वो ट्रिबुलेशन यानी कि उस क्लेश के दिन के बारे में बताता है। ये तो रैप्चर के बाद की बात है, सूरज जो है वो अंधेरा हो जाएगा और खून जैसा चांद हो जाएगा और आसमान से जो सितारे हैं वो जमीन पर गिर पड़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे और बहुत सारी आयतें और पढ़ें तब आप देखेंगे। जब आप 40वीं आयत में पहुंचेंगे वहां फिर लिखा है और फिर खुदावंद की वापसी का वक्त दोबारा से लिखा जाता। और उसके बाद जब दो एक बिस्तर पे होंगे और वो खेत में काम कर रहे होंगे दो शख्स और दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक पीछे रह जाएगा। और तब उसके बाद 24 आयत में 45 आयत में जबकि वो जो खुराक है वो खुराक रूहानी खुराक बांटी जाएगी दी जाएगी, और जो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है जो कि जो खिदमत करने वाले हैं, जो गवाही देते हैं, जो कलाम की गवाही देते हैं, क्योंकि वो कलाम में कुछ और मिलावट ना करें, सिर्फ वही जो खालिस कलाम में लिखा है, जो कुछ भी वहां बताया गया, जो खुदा के कलाम से बताया गया, जो बताया गया कि सारी दुनिया की तरफ से, और फिर उसके बाद वो आगे चलता है, और हम देख सकते हैं मत्ती 25 में हम पहुंचते हैं, जब जो 24 के साथ जुड़ा हुआ है, तब मत्ती 25 जब शुरू होता है तो फिर तो वो खुदावन के घराने में ये खाना जो है ये तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, और फिर सारी चीजें वापसी वैसे ही बहाल की जाएंगी, और फिर लिखा है फिर खुदावन का जो कलाम है, खुदावन की जो बादशाहत है वो 10 कुंवारियों के जैसी होगी, और फिर वहां लिखा है कि जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए गई हम 24वें बाब में पढ़ते हैं बहुत सी लड़ाइयों और अर्थक्वेक्स के बारे में, पर आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो उसने कलीसिया के साथ जो अपने कलीसिया के साथ जो गुफ्तगू करी, जो पौलुस रसूल ने अपनी गवाही के द्वारा उसने भी लोगों की आंखों को खोला, उस गवाही से उस कलाम से जो खुदा के कलाम में जो गवाही है, ये खुदा के खालिस कलाम की जो गवाही है, ये लोगों की आंखें खुलती हैं इस कलाम के जरिए से, और तब वो ये देखते हैं कि खुदावन ने किस चीज का खुलासा किया, किस चीज का मुकाशवा दिया, क्या दिखाया, और फिर हम वापस आते हैं। अब हम यहूदा के उस खत में दोबारा वापस आते हैं, 5वीं आयत में, जिन्होंने ईमान नहीं लाया, जो ईमानदार नहीं थे वो नाश किए गए, डिस्ट्रॉय किए गए। उसके बाद मत्ती 25 में उनमें से सिर्फ जो बुलाए गए थे, उनमें से सिर्फ आधे जो थे, जिनके पास चिरागदान थे, लाइट थी, उनके पास मुकाशफा था, जिन्होंने इस मैसेज को सुना, पर फिर भी उनमें से सिर्फ आधे जो थे वो खुदावन की जो पाक वेडिंग सफर है उसमें शरीक के लिए तैयारी में थे। देखिए, जो खुदा का खालिस कलाम है, और खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं अपने सारे दिल से कि उसने ये फजल दिया कि हम वाकई में इस बात पर ईमान रख सकते हैं, और ये जो इस चीज का हमें मुकाशफा दिया गया, जो हम पर खोला गया, खुलासा किया गया, ये वो छुपा हुआ मना था, खालिस मना था। कितनी बारी भाई ब्रनम ने इसके ऊपर जोर देकर कहा कि जो बातें, जो भेद की बातें छुपी हुई थीं, वो खुदावन ने हम पर नाजिल कर दी, खोल दी, और ये जो खुदावन का खालिस मना था, जो छुपा हुआ था, एक भेद था, वो खुदा की दुल्हन जो है उसके ऊपर नाजिल किया गया, खोला गया, प्रकाशित किया गया। ना सिर्फ ये कि जो हम सुनते और देखते हैं आज के जमाने में, पर खुदा का कलाम आज हमसे क्या कहता है, ये खुदा का काम हमें बताता है, कलाम बताता है कि खुदा का जो नजात का जो प्रोग्राम है वो कहां तक पहुंच गया और अब क्या रह गया, یہ خدا کا کلام ہمیں بتا دیتا ہے, اور خداوند اپنے کام کو کامل کرے گا, پورا کرے گا. اور ہم رومیو 8 کو پڑھتے ہیں, رومیو 8 اور 11 کو پڑھتے ہیں. رومیو 8 11 میں پڑھتے ہیں, اسی آتما جس نے یسو کو مرے ہوئے سے جلایا تم میں بسا ہوا ہے, تو جس نے مسیح کو مردوں سے جلایا وہ تمہاری دیہوں کو بھی اپنی آتما کے دوارا جو تم میں بسا ہے جلا دے گا. میرے بھائی اور بہنوں, یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے 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 لیمپس کو, مشالوں کو ہاتھ میں رکھے رہے, نہیں, یہی نہیں کافی ہے کہ ہم ان 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 برتنوں میں جو آئل پڑا ہوا ہے, نہیں, ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں. اب وہ ہمارے زندگی کی جو پرسنل ایکسپیرئنس ہیں اس میں وہ آئل وہ جو وہ صرف نہ ہمیں انوائنٹ کرے, یہ پینٹیکوسٹل موومنٹ میں صرف ایک انوائنٹنگ تھی, وہ ان کے اوپر انوائنٹنگ تھی پاک روح کی, اور انہوں نے سوچا کہ ہم کو تو وہ روشنی مل گئی ہے, پر خداوند کے اندر کون, کس کے اندر خدا کا آتما بستا ہے جو اس سچائی کو سمجھ سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے اور ایکسپیرئنس کر سکتا ہے, اور جو پاک روح کی اگوائی میں چلتا ہے, جو خداوند کے روح سے چلائے چلتے ہیں وہ خداوند کے بچے ہیں, وہ خداوند کے فرزند ہیں. اب دیکھیے ایفیسیاں 1:13 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم جب ہم نے خداوند کے اس خالص کلام کو سن لیا, ہم پاک روح سے, پاک روح کی مہر ہمارے اوپر لگ گئی, تب تک کہ جب تک کہ خداوند کی واپسی نہیں ہوتی, ہم مہر بند کر دیے گئے ہیں, پر مہر لگ گئی ہے, جس سے کہ کوئی اس بات کو نہ بھول جائے کہ ایک بار پھر سے یہ لکھا ہوا ہے چوتھے باب کی 30 آیت میں, ایفیسیوں میں, کہ ہم پر پاک روح کی مہر لگ چکی ہے, جس سے کہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر رہ سکے, اور یہ وہ کوئکننگ پاور ہے جس میں وہ زور ہے, وہ قوت ہے, یہ باہر سے نہیں آتی, یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے, ہمارے کو اندر سے جھکجورنے اور ہلانے والی ہونی چاہیے. ہم تو اس بات کے لیے بڑے لالائت ہیں کہ ہم پر پاک روح کا بپتسمہ ہو, اور ہم اس کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خداوند کا جو روح ہے وہ ہمارے اندر بس جائے, وہ ہمارے اندر آ جائے, جس سے کہ تو جب وہ وقت آئے جو خدا کا جب خداوند کی جب واپسی ہو, تو ہم تب خداوند کی جو قوت ہے وہ ہمارے اندر پہلا تسلونیوں اس کا 3 باب اور 3:13, پہلا تسلونیوں 3:13, پہلا سے سنو نہیں کیوں 3:13, تاکہ وہ تمہارے منوں کو ایسا سر رکھے, قائم رکھے, جب ہمارا یسو اپنے سب پوتر لوگوں کے ساتھ آئے تو ہمارے پرمیشور پتا کے سامنے پوترتا میں نردوش ٹھہرے. اور اب ہم خاتمے کی طرف پہنچتے ہیں, जब हमारा खुदावन आएगा, जब हमारा खुदावन को सूली चलाया गया, तब वो कब्रें खुल गई थी और बहुत सारे पुराने जमाने के जो संत लोग थे वो उस पहली रिजरेक्शन का हिस्सा बने और वो बहुत लोगों को दिखाई दिए और फिर उसके बाद वो भी प्रभु के साथ उठा लिए गए खुदावन की दूसरी आमद पर, वापसी पर। हमारा खुदावन जो उस वक्त में, जो नए अदनामे के वक्त में, उस 2000 सालों में जो गए थे, जो प्रभु में सो गए थे, वो उनको वापस लाता है। और वो ऊंची ललकार जो है, शाउट जो है, वो उनके लिए है जो कब्रों में सोए हैं, और वो पहले वापस बाहर आते हैं। और फिर आज सभी जो हमारे पास जिस्म है, पर इस जिस्म में हम खा नहीं सकते और पी नहीं सकते, हमारे पास एक इंसानी जिस्म है, पर जो खुदावन का जो जिस्म है, वापस खुदावन की वापसी पर एक जी उठा हुआ जिस्म हमको दिया जाएगा, जिसमें वो खा सकते हैं और पी सकते हैं। जैसे कि हम बदल जाएंगे, हम भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमारा खुदावन ने हमको बताया कि उसकी वापसी पर, कि उसने कहा कि डू यू हैव समथिंग टू ईट, और तब उसको फिश दिया। मैं क्या क्या और बताऊं, मैं तो इतना ज्यादा खुशी से भर गया हूं कि खुदावन ने हमारे जमाने में क्या क्या किया। और साल आए और साल आकर चले भी गए, 1900 बहुत सारे साल आए और चले गए, 1965 के बाद भी बहुत साल आए और चले गए, 1979 के बाद भी बहुत से साल आए और चले गए, पर अब हम खास तौर पर अब देखिए हम बिल्कुल करीब पर पहुंच चुके हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, खुदा जो है वो मोहब्बत है, और जो पाक रूह का जो बपतिस्मा है उसमें सिर्फ 9 गिफ्ट्स ही नहीं है, बट वो बपतिस्मा है जो सब कुछ मोहब्बत में आ जाती है। लोग बहुत दिन मुझसे कहेंगे, हमने पेशन गोई नहीं करी, हमने क्या मौजे नहीं करे, हमने ये नहीं किया। मैं उनसे कहूंगा कि मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आज वो वक्त है, क्योंकि वो जो खुदावंद का खालिस और पाक कलाम है, जो पाक मोहब्बत है, खालिस मोहब्बत है, वो हमारी जिंदगियों में पाक रूह के वसीले से आ जाए। जैसे भाई ब्रैनम ने कहा कि सिर्फ जो खालिस, जो कामिल मोहब्बत है, सिर्फ वही खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो पाएगी। हम एक दूसरे से प्रेम रखे हैं, और उस प्रेम से जो आत्मिक प्रेम है, कुछ भी ना छोड़ें, हम कुछ भी इल्जाम ना लगाएं, कुछ भी कोई किसी के बारे में नेगेटिव बात ना कहें, पर बड़े वफादारी से खुदावन की सेवा करते रहें। और इस चीज का हम अपनी तैयारी को जायज रखें, और हम खुदावन की वापसी के लिए अपने आप को तैयार करें, और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और जो खिदमत करने वाले भाई लोग हैं वो इस बात को समझें, जैसा कि लिखा है, जैसे जर्मन बाइबल में लिखा है कि जो खुदावन का घराना है, वो जो इस खुराक को बांट रहे हैं कि जिससे कि वो इस खुराक को बांट सकें, और खुदावन की जो मेज है वो अच्छी तरह से बड़ी असूदगी से भरी रहे, और जो ईमानदार लोग हैं वो उस खुराक को हासिल करें और उसका फायदा उठाएं। और इस बात को याद रखें, हमारे खुदावन ने कहा, मेरा खुराक क्या है, कि मैं उसकी मर्जी को पूरा करूं जिसने मुझे भेजा, ये मेरी खुराक है, और मैं उन कामों को, उस सेवा को, उस खिदमत को अंजाम दूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है। और जैसे कि मुझे 2 अप्रैल 1962 को ये हिदायत दी गई, और मैं जानता हूं, क्योंकि सबके दिल में एक ख्वाहिश है, ये उसको करने की ख्वाहिश है जो खुदावन ने कहा, और जो खुदावन ने कहा, और उसने कहा, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, खुदा दुनिया को पता लग जाएगा कि तुम मेरे चेले हो, मेरी पैरवी करने वाले हो। खुदावन की बख्शिश और आशीषें हम सब पर टिकी रहे, और सभी लोगों पर, सभी जुबान के और सभी जगह के लोगों, सभी देश मुल्कों के लोगों पे। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी दुआ है, खुदावन के पाक नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। और अब हम आखिरी दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई बोग हमारे साथ दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, जो अभी हमने सुना। हम किसी इंसान के की बातों को हमने नहीं सुना, पर हमने तो खुदावन के उस मकसूद किए हुए और उस मुकाशफा वाले कलाम को सुना। और खुदावन, तेरा कलाम हर चीज को पूरा करता है, जो तुझ पर ईमान रखते हैं खुदावन, तेरा कलाम उनको बख्शिश देता है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, और उस नए अहद के खून के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और जो कि खुदावन ने तूने क्रूस पर बहाया। सभी अपने लोगों को आशीष दे जिन्होंने इस बात को सुना। हमारे सारे भाई बहनों को यहां क्रेफिल्ड में भी बहुत आशीष दे। हम तेरा बड़ा शुक्र करते हैं खुदावन, तूने हमें आशीषें दी, बरकतें दी। ओ खुदावन, इस खुदावन के जो मोहब्बत है उसमें हम जुड़े रहें, और इन आखिरी दिनों में, और खुदावन हम तेरी मदद के द्वारा और इस कलाम के लिए फिर तेरा शुक्र करते हैं। और भाई फ्रैंक को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और खुदावन उसके आत्मा में भी और शरीर में भी उसे बरकत दे। हम सारी चीजों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। Thank you.
name is holy. And all the world is full of his glory. All the earth is full of his glory. Worship him. Worship the Lord.